आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिव्यांगना द्विवेदी एंड वी वर डूइंग सेकेंड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, जिसमें आज हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम द पेज नंबर 18 एंड फ्रॉम द टॉपिक द क्लेम टू पैरामाउंटेसी। सो लेट्स स्टार्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएडेड एन एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। Under Lord Hastings, Governor General from 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. ऊपर अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उससे हमें ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि अर्ली 19th सेंचुरी के टाइम पर जो कंपनी थी उसने एक एग्रेसिव पॉलिसी अपना ली थी टेरिटोरियल एक्सपेंशन की, यानी कि वो अपनी एक्सपेंशन जो है कंपनी का वो हर एक टेरिटरी में करना चाहते थे और हर एक टेरिटरी को अपने अंतर्गत लेना चाहते थे। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पर जो कि गवर्नर जनरल थे फ्रॉम द ईयर 1813 टू 1823, एक न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी इनिशिएट की गई, जिसका मतलब था नाउ द कंपनी क्लेम दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट पावर्स वर ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो इसका मतलब ये था कि जो कंपनी की पावर है वो सुप्रीम है, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई पावर ही नहीं है। जो सबसे सुप्रीम पावर है वो कंपनी के पास है और इंडियन स्टेट्स के जो राजा वगैरह हैं उनकी भी कोई मान्यता नहीं होगी, उनके भी रूल को सही नहीं माना जाएगा, उनके जो लॉज वो बनाएंगे जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे वो खारिज कर दिए जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो रूल बनाएगी वही सिर्फ उस टाइम पर लागू किया जाएगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। दिस व्यू कंटिन्यूड टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। तो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब अपना काम निकालने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, वो जितनी भी इंडियन किंगडम्स थी उन सबको एनेक्स करते गए, उनको डराते धमकाते गए और पूरी तरीके से उनका कंट्रोल अपने पास ले लिया था। तो बाद में भी उनकी यही पॉलिसीज थी जिसके थ्रू वो लोग इतना ज़्यादा कॉन्कर कर पाए थे इंडियन स्टेट्स को, किंगडम्स को। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। For example, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Chennamma took two arms and led an anti-British resistant movement. तो ये जो process था ये कभी भी unchallenged नहीं रहा था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि ब्रिटिशर्स ने बोला किसी भी राजा महाराजा को कि भाई तुम अपना मतलब सरेंडर कर दो और अपनी पूरी किंगडम हमें दे दो, तो राजा ने चुपचाप दे दिया था। कुछ प्रोटेस्ट भी हुए थे, कुछ रूलर्स ऐसे थे जहाँ पर ये लोग कब्जा करने जा रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट दिखाया था। तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, एक स्मॉल स्टेट था कितूर जो कि अब कर्नाटका में है, वहाँ की रानी चमन्ना जो थी उन्होंने एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट शुरू कर दिया था वहाँ पर। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। बट रयन्ना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कितूर कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। तो रानी को अरेस्ट कर लिया गया था 1824 में और प्रिजन में ही उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनके जो रायन्ना नाम के एक चौकीदार थे, एक जो जिसे हम बोलते हैं वॉचमैन थे सांगोली में कितूर में, उन्होंने ये जो रेजिस्टेंस था इसको कैरीड आउट किया था, आगे बढ़ाया था। विथ पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉयड मेनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स। He was caught and hanged by the British in 1830. You will read more about several cases of resistance later in the book. तो हुआ क्या था, जो रायन्ना थे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला लोगों का, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश के जो कैंप्स थे रिकॉर्ड्स थे उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, बट उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उनको आखिरकार पकड़ लिया और 1830 में उनको हैंग कर दिया गया, मतलब फांसी दे दी गई उनको। तो इनके बारे में हम बहुत सारे केसेस, जो ये रेजिस्टेंस के जो केसेस है वो हम लेटर ऑन इस बुक में बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, जो कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस ने किए थे। नाउ कम टू फिगर 11, यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड बिलो इट फिगर 12 अ स्टैचू ऑफ द क्वीन ऑफ कितूर कर्नाटका। तो क्वीन ऑफ कितूर जो है उनका यहाँ पर एक स्टैचू बना हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from northwest. Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. तो 1830s के टाइम पर जब लास्ट का टाइम चल रहा था 1830s का, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको लगा कि रशिया कहीं इंडिया पर कब्जा ना कर ले, तो उनको ये लगा कि अगर रशिया एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी एशिया में और वो इंडिया में एंटर हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट से, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम अपना एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो इस डर के तहत उन लोगों ने अपना एक्सपेंशन नॉर्थ वेस्ट की तरफ शुरू कर दिया। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 एंड 1842 एंड एस्टैब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर। तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक वॉर लड़ा था अफगानिस्तान से, जो कि 1838 एंड 1842 के टाइम पर था, और वहाँ पर उन्होंने एक इनडायरेक्ट कंपनी रूल स्टैब्लिश कर लिया था। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। तो सिंध जो था वो टेक ओवर कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू 1843 में, और उसके बाद पंजाब को भी ये लोग कॉन्कर करना चाहते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब पूरे इंडिया पे ये लोग कर चुके थे तो ये सारे ये पंजाब और ये सब कुछ अलग से क्यों कर रहे थे। उस टाइम पर, बहुत अर्ली टाइम पर, इंडिया पूरा पंजाब एंड ऑल का एरिया नहीं कंसिडर किया जाता था, बाद में उसको कंसिडर किया जाने लगा। तो इन लोगों ने अभी तक पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ जितने भी सदर्न स्टेट्स थे वो सब कुछ कॉन्कर ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इन्होंने अभी कुछ भी कॉन्कर नहीं किया था, इसलिए वो उस जगह पे अपना जो एम्पायर है, जो अपनी टेरिटरी है, उसे एक्सपैंड करना चाहते थे अपनी कंपनी को। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। तो जब पंजाब में वो अपनी टेरिटरी एक्सपैंड करना चाह रहे थे, बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे थे, तो महाराजा रंजीत सिंह जो थे उनकी वजह से कंपनी का वहाँ पर शासन नहीं चल पाया। आफ्टर हिज डेथ इन 1839 टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। तो जब राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई थी 1839 में, तो एक दो काफ़ी लंबे वॉर लड़े गए सिख किंगडम के साथ, और उसके बाद फाइनली 1849 में पंजाब को भी कंपनी ने एनेक्स कर लिया था, अपने अंतर्गत ले लिया था। यू कैन सी द फिगर 13 ऑन द राइट हैंड साइड, महाराजा रंजीत सिंह होल्डिंग कोर्ट। नाउ कम टू द टॉपिक, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस अकर्ड अंडर लॉर्ड डलहाउजी, हु वॉज द गवर्नर जनरल फ्रॉम 1848 टू 1856। He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapses. The doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse. That is, become part of company territory. तो final wave of annexations जो था, मतलब जिस तरीके से वो लोग पूरा country को अपने rule के अंतर्गत लेना चाह रहे थे, वो हुआ था Lord Dalhousie के time पर, जब वो governor general थे, और उनका टाइम पीरियड था 1848 से 1856 तक, जब तक वो गवर्नर जनरल रहे थे। तो उन्होंने ये बोला था, एक पॉलिसी अपनाई थी जिसका नाम था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या होता था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर है, उसके मरने के बाद कोई भी मेल हायर नहीं बचता है उसकी किंगडम का, कोई भी ऐसा उसका मेल उत्तराधिकारी नहीं बचता है जो उसकी किंगडम को आगे बढ़ाएगा, उसकी थ्रोन को और आगे सक्सीड करेगा, तो वो किंगडम लैप्स हो जाएगी और वो कंपनी की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। वन किंगडम आफ्टर अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय अप्लाइंग द डॉक्ट्राइन। सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। तो बहुत सारी जो किंगडम्स थी, एक के बाद एक सबको ये लोग अपने कंट्रोल में लेते गए ये डॉक्ट्राइन अप्लाई करके। तो सतारा जो थी वो 1848 में इनके कंट्रोल में हो गई थी, संबलपुर जो किंगडम थी 1850 में, उदयपुर इन 1852, नागपुर एंड झांसी आल्सो। तो ये सारे इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए थे ब्रिटिशर्स ने। फाइनली इन 1856 द कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध। फिर 1856 में इन्होंने अवध का भी कंट्रोल पूरी तरीके से अपने हाथों में ले लिया था। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, दे सेड दे आर ऑब्लिक बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब। एनरेज्ड बाय द ह्यूमिलिएटिंग वे इन विच द नवाब वॉज डिस्पोज, द पीपल ऑफ अवध ज्वाइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रेक आउट इन 1857। जब ब्रिटिशर्स ने 1856 में अवध को भी अपने कॉन्कर कर लिया था, पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था, तब उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट ऐड किया उस पर कि हम अपनी ड्यूटी से बाध्य हैं, वी आर ऑब्लिक टू आर ड्यूटी, और इसलिए हमें अवध लेना पड़ेगा ताकि हम लोगों को मिस गवर्नमेंट जो हो रही है वहाँ पर, उससे हम फ्री कर सकें, जो कि वहाँ के नवाब की वजह से हो रही है। उसके बाद बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग वे से जो नवाब थे उनको डिस्पोज किया गया था, और इस वजह से क्या हुआ था, जो अवध के लोग थे उन्होंने जो ग्रेट रिवोल्ट था, क्रांति थी 1857 में, वो ब्रोक आउट हो गई थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। यू कैन सी पिक्चर फिगर 14, अ पोर्ट्रेट ऑफ वीर सुरेंद्र साई, ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर। नाउ कम टू द एक्टिविटी बॉक्स बिलो। Imagine that you are a Nawab's nephew and have been brought up thinking that you will one day be king. Now you find that this will not be allowed by British because of new doctrine of lapse. What will be your feelings? What will you plan to do so that you can inherit the crown? तो आपको ये बताना है कि आप नवाब के nephew हो और आप किंग बनना चाहते हो, आपको हमेशा से बचपन से बड़ा होते समय यही बताया गया है कि आप एक दिन किंग बनोगे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स की एक नई डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से आप नहीं बन सकते, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं दैट यू हैव टू एक्सप्रेस। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, कम टू फिगर 14A, इंडिया 1797। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर येल्लो कलर से जो दर्शा रहा है दैट इज सिम्बलाइजिंग एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो अभी ये इतने एरियाज जो थे वो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, और जो ऑरेंज कलर से हैं दैट इज एरियाज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, देन कम टू फिगर 14B, इंडिया एट 1840। तो इसमें देखो येलो वाला जो एरिया है पूरा वो ब्रिटिश रूल वाला एरिया है, तो अब देखो 1840 में काफ़ी चेंज आ गया, ज़्यादातर जो जगह इन लोगों ने ले ली है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फिगर। नाउ कम टू थर्ड वन, 14C, इंडिया इन 1857। तो इस टाइम पर बहुत सारा पार्ट जो इंडिया का था वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। फिगर 11, कम टू दिस बॉक्स, फिगर 11ABC, इट शुड नॉट बी 11, इट शुड बी 14, ये 14 लिखा होना चाहिए, गलत लिखा है यहाँ पे, इट्स द एक्सपेंशन ऑफ फिगर 14ABC, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटोरियल पावर इन इंडिया। Look at these maps along with the present day political map of India. In each of these maps, try and identify the different parts of India that were not under British rule. तो आपको वो parts find out करने हैं जो British rule के under नहीं थे. Now come to next page on the new topic, that is setting up a new administration. Warren Hastings, Governor General from 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. So Warren Hastings jo the, jo ki governor general the, jinka time period tha 1773 se 1785 tak, wo ek bahut important figure yani ki ek bahut important personality mane jate hain, jinhone bahut important role play kiya tha company ki power ko expand karne mein, phailane mein. By his time the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. British territories were broadly divided into administrative units called presidencies. तो इनके time पर, Warren Hastings के time पर जो company है उसका control, उसकी जो territory है वो सिर्फ Bengal में ही नहीं बल्कि Bombay और Madras में भी फैली थी। तो इनकी जो territories थी इनको ये लोग divide करते थे administrative units में, जिन्हें presidencies बोला जाता था। There were three presidencies, Bengal, Madras and Bombay, जो इनके control में थी। Each was ruled by a governor. The supreme head of the administration was the governor general. तो जो हर एक presidency थी, चाहे वो Bengal, Madras या Bombay हो, हर एक presidency एक governor के द्वारा rule की जाती थी, और जो supreme head होता था governor से भी ऊपर, that was governor general, जो कि सारा administration देखता था। Warren Hastings, the first governor general, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जो उस टाइम के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कुछ ऐसे प्रोसीजर्स इंट्रोड्यूस किए थे, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे जस्टिस शो करने के लिए। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टैब्लिश। तो जो जस्टिस का, न्याय का जो एक तरीका है वो 1772 में उनकी तरह से एक अलग तरीके से उन्होंने डिपिक्ट किया। Each district was to have two courts, a criminal court, Faujdari Adalat, and a civil court, Diwani Adalat. तो उन्होंने बोला, judicial system में उन्होंने क्या चेंज लाया, कि उन्होंने बोला कि हर एक district में दो court होने चाहिए, एक होगा criminal court जिसको Faujdari Adalat बोलते हैं, और दूसरा होगा civil court जिसको Diwani Adalat बोलते हैं। Maulvis and Hindu pandits interpreted Indian laws for the European district collectors who presided over civil courts. The criminal courts were still under the Qazi and Mufti, but under the supervision of the collectors. So, उन्होंने बोला कि जो मौलवीज हैं और हिंदू पंडित हैं वो उन्होंने इंडियन लॉज को इंटरप्रेटेट किया था फॉरेन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के लिए जो कि सिविल कोर्ट्स में थे, और जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो आज भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थे, उनके सुपरविजन में थे, जो कलेक्टर्स वगैरह थे वहाँ के उनके सुपरविजन में थे. नाउ कम टू द ग्रीन बॉक्स ऑन द राइट हैंड साइड. काजी मीन्स अ जज एंड मुफ्ती मीन्स अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपाउंडिंग द लॉ that the Qazi would administer. तो ये court से related दोनों officials थे. See figure 15, the trial of Warren Hastings painted by R.G. Pollard 1789. When Warren Hastings went back to England in 1785, Edmund Burke accused him of being personally responsible for the misgovernment of Bengal. This led to an impeachment proceeding in the British Parliament that lasted in 7 years. तो जब वॉरेन हेस्टिंग इंग्लैंड गए 1785 में, तो जो एडमंड ब्रूक थे उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि इनकी वजह से बंगाल में मिस गवर्नमेंट हुआ था और हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी. तो ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है ये 7 साल तक चला था. नाउ कम टू दैट ग्रीन बॉक्स अगेन. मीनिंग ऑफ इम्पीचमेंट इज गिवन अ ट्रायल बाय हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन इंग्लैंड फॉर चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन हाउस ऑफ कॉमन्स. तो इम्पीचमेंट का मतलब होता है कि एक ट्रायल किया जाता है एक बंदे पर जिसके मिसकंडक्ट के लिए उस पर आरोप लगाए जाते हैं और केस चलता है. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. अ मेजर प्रॉब्लम वॉज दैट द ब्राह्मण पंडित्स गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्र. To bring about uniformity, in 1775, 11 pandits were asked to compile a digest of Hindu laws. तो एक major problem ये हो गई थी, जो ब्राह्मण पंडित्स थे वो अलग अलग interpretation देते थे अपनी local laws के based पर, जो कि उनके अलग अलग धर्मशास्त्र के हिसाब से बताई जाती थी. तो एक uniformity लाने के लिए 1775 में 11 जो पंडित थे उनको लिया गया और उनसे बोला कि आप Hindu laws को आप compile करके हमें दो. N.B. Hald Translated this digest into English. तो उन्होंने क्या किया, एन बी हॉल देखते हैं, उन्होंने इस पूरे जो ग्रंथ जो भी इन्होंने पूरा बनाकर दिया था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया. By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefit of European judges. और 1778 तक एक code of Muslim laws भी जो था वो भी कंपाइल करके बन गया था ताकि जो यूरोपियन जजेस हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो पनिशमेंट सुनाने में. Under the Regulating Act of 1773, a new Supreme Court was established, while a Court of Appeal, the Sardar Nizamat Adalat, was also set up at Calcutta. So, 1773 में जब Regulating Act आया, तो उस time पर New Supreme Court established किया गया, और जो Court of Appeal था, Sardar Nizamat Adalat, वो Calcutta में set up किया गया. The principal figure in an Indian district was the collector. As the title suggests, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. तो principal figure यानी कि बहुत important figure जो था Indian district में वो एक collector था. उसका जैसे कि नाम suggested है collector, तो उसका main काम था revenue और taxes वगैरह collect करना और law and order को बना के रखना अपनी district में जहाँ का वो collector है. उसके लिए वो जजेस की हेल्प ले सकता था, पुलिस ऑफिसर्स एंड दरोगास की हेल्प ले सकता था. हिज ऑफिस द कलेक्टरेट बिकेम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड पेट्रोनेज दैट स्टीडीली रिप्लेस्ड प्रीवियस होल्डर्स ऑफ अथॉरिटी. तो इसका जो ऑफिस है जो कलेक्टरेट वो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर और पेट्रोनेज बन गया था जहाँ पर वो जो अपना कंट्रोल है उसकी अथॉरिटी है उसको दिखा सकता था. नाउ कम टू द कंपनी आर्मी. Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. तो जो colonial rule आया था India में उसमें बहुत सारे नए administration के reform और ideas आए थे, but पूरी जो power है वो military strength पर थी. The Mughal army was mainly composed of cavalry, sawars, trained soldiers on horseback and infantry, that is, paidal foot soldiers. they were given training in archery, तीरंदाजी and the use of the sword. तो इनके जो ज़्यादातर मुगल आर्मी के थे लोग उनको ने ले लिया था. ट्रेन सोल्जर्स होते थे, सवार होते थे और कुछ होते थे जो कि पैदल चलने वाले जो होते थे फुट सोल्जर्स, और उनको आर्चरी यानी कि तीरंदाजी सिखाई जाती थी, तलवार का यूज़ करना सिखाया जाता था. द कैवलरी डोमिनेटेड द आर्मी एंड द मुगल स्टेट डिड नॉट फील द नीड टू हैव अ लार्ज प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री. तो जो कैलवरी थी वो एक बहुत ही डोमिनेटेड आर्मी थी, और जो मुगल स्टेट था उनको ये नहीं लगता था कि हमें इतनी ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेन इन्फेंट्री की ज़रूरत है. द रूरल एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड लोकल जमींदार्स ऑफन सप्लाइड द मुगल्स विद पैदल सोल्जर्स. तो जो रूरल एरियाज थे वहाँ पर काफ़ी सारे आर्म्ड पीजेंट्स मिलते थे इनको, और जो लोकल जमींदार्स थे वो पैदल सोल्जर्स प्रोवाइड करते थे ब्रिटिशर्स को. अ चेंज अकर्ड इन 18th सेंचुरी व्हेन मुगल सक्सेसर्स स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स इनटू देयर आर्मीज एंड ट्रेनिंग देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स. लेकिन एक चेंज आया जब 18th सेंचुरी के टाइम पर, जो मुगल सक्सेसर थे लाइक अवध एंड बनारस के, उन्होंने पीजेंट्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया था आर्मी में और उनको एक प्रोफेशनल सोल्जर की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था. द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड व्हेन इट बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी व्हिच केम टू बी नोन एज सिपॉय आर्मी फ्रॉम द इंडियन वर्ड सिपाही मीनिंग सोल्जर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सेम मेथड अडॉप्ट किया था जब वो रिक्रूटमेंट कर रहे थे अपनी आर्मी का, और इसको सिपॉय आर्मी बोला जाता था. सिपॉय जो है वो इंडियन वर्ड सिपाही से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सोल्जर. एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज्ड फ्रॉम 1820s, द कैलवरीज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज आर्मी डिक्लाइन. दिस इज बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा, आगे अफगानिस्तान एंड इजिप्ट, वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मस्केट्स एंड मैचलॉक्स. वॉरफेयर की जो टेक्नोलॉजी थी वो 1820s से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी, और जो कैलवरी की रिक्वायरमेंट थी वो बढ़ने लग गई थी. कंपनीज की आर्मी की जो रिक्वायरमेंट थी वो घटने लग गई थी, एक्चुअली बढ़ने नहीं लग गई थी. वो इसलिए हुआ था क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो थे वो बर्मा, अफगानिस्तान और इजिप्ट के साथ फाइट कर रहे थे, जहाँ पर उनके सोल्जर्स के पास मस्केट एंड मैच लॉक्स थे. वी विल सी द मीनिंग लेटर ऑन ऑफ दीज वर्ड्स ऑफ दैट इज ब्लैक हाईलाइटेड. द सोल्जर्स ऑफ द कंपनीज आर्मी हैड टू कीप पेस विद चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट. अब जो सोल्जर्स थे उनको ये जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं उसके साथ कोपअप करना था, और उनकी जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स थी उनको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाना था. इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश बिगैन टू डेवलप अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर. तो अर्ली 19th सेंचुरी में उन्होंने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर डेवलप करना शुरू कर दिया. नाउ कम टू दिस सोर्स 5 ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर. I impeach the common enemy and oppressor of all. Here is a passage from Edmund Brooke's eloquent opening speech during the impeachment of Warren Hastings. उन्होंने जो स्पीच दी थी वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है. I impeach him in the name of people of India whose rights he has trodden under his foot and whose country he has turned into a desert. तो बोल रहे हैं कि मैं इनको impeach कर रहा हूँ इंडिया के उन लोगों की तरफ से जिनके जो हक हैं इन्होंने अपने पैरों तले कुचल दिए और उस पूरे अच्छे फ्लरिशिंग स्टेट को, उस कंट्री को एक डेजर्ट के रूप में तब्दील कर दिया. लास्टली इन द नेम ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, इन द नेम ऑफ बोथ द सेक्सेस, इन द नेम ऑफ एवरी एज, इन द नेम ऑफ एवरी रैंक, आई इम्पीच द कॉमन एनिमी एंड एप्रेसर ऑफ ऑल. तो उन्होंने बोला इंसानियत के जो दुश्मन हैं और जो भी सारी चीज़ें, मतलब हर एक उम्र के व्यक्ति के तरफ से, हर एक रैंक होल्डर की तरफ से मैं इसको इम्पीच करता हूँ क्योंकि ये सबके कॉमन एनिमी है. Now come to this green box of word meanings. Meaning of Dharma Shastra is Sanskrit text prescribing social rules and codes of behavior composed from 500 BC onwards. Now meaning of Savar is men on horses. Musket is a heavy gun used by infantry soldiers. And matchlock means an early type of gun in which the powder was ignited by a match. Now come to last line and then next page. Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill and discipline that regulated their life far more than before. तो जो soldiers थे उनको बहुत ज़्यादा train किया जा रहा था, European style की training दी जा रही थी, बहुत ज़्यादा discipline और regulated life उनको बताया जा रहा था जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी. Often this created problems since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? तो इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी क्योंकि हर एक कास्ट और कम्युनिटी के लोग यहाँ पर उन सब चीज़ों को भुला कर उन्हें प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया जाता था. बट क्या ये इतना ईजी था कि लोग अपने कास्ट रिलीजियस फीलिंग्स को सब एकदम ऐसे ही जाने देंगे और खुद को सिर्फ एक सोल्जर समझेंगे नॉट एज द मेम्बर ऑफ देयर ओन कम्युनिटी और रिलीजन. वॉट डिड द सिपॉयज फील? हाउ डिड दे रिएक्ट टू द चेंजेस इन देयर लाइव्स एंड देयर आइडेंटिटी? दैट इज देयर सेंस ऑफ हु दे वर. द रिवोल्ट ऑफ 1857 गिव्स अस अ ग्लिम्स into the world of sepoys. You will read about this revolt in chapter 5. तो जो सिपाही थे, जो military militants, जो military men थे, वो क्या सोचते थे, उनने कैसे react किया कि उनकी life इतनी ज़्यादा जब change हो गई है, तो ये सब चीज़ें हमें revolt of 1857 में पता चलेंगी और उसके बारे में हम chapter 5 में read out करेंगे. Now see figure 16 on the top of the page. A savar of Bengal in the service of the company painted by an unknown Indian artist 1780. तो ये जो सवार जो होते थे, घुड़सवार जो होते थे सोल्जर्स, उनकी पिक्चर है यहाँ पर. आफ्टर द बैटल्स विद द मराठास एंड द मैसूर रूलर्स द कंपनी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट्स कैलवरी फोर्स. तो जब उनका जो कंपनी का जब बैटल हुआ था मराठा और मैसूर रूलर्स के साथ, तब उनको रियलाइज हुआ कि हमें अपनी मिलिट्री पावर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है. नाउ कम टू द कंक्लूजन पार्ट. Thus the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. Till then it would take anywhere between 6 to 8 months to travel the India by sea. Steam ships reduced their journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like India. ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुई, हमारे यहाँ ट्रेडिंग कंपनी बनकर आई थी, उसके बाद पूरी तरीके से टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर बन चुकी थी. उनके अराइवल से काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी भी आई अर्ली 19th सेंचुरी में हमारे इंडिया में. फॉर एग्जांपल कि पहले अगर आपको इंडिया ट्रैवल करना है तो 6 से 8 महीने आपको लगते थे समुद्र के थ्रू आने से, लेकिन जब से स्टीम शिप्स आ गए थे तो जर्नी का टाइम जो था वो कम से कम 3 हफ्ते जल्दी हो गया था. तो इसकी वजह से ज़्यादा ब्रिटिशर्स और उनकी फैमिली इतनी जो दूर कंट्री है इंडिया, यहाँ पर आ पाते थे. बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. 1857 तक कंपनी जो थी उनके पास डायरेक्ट रूल था 63% जो टेरिटरी है हमारी कंट्री का उसमें, और उसमें पॉपुलेशन जो थी हमारे पूरे कंट्री की दैट वॉज 78%. Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. तो ये जो indirect influence था remaining territory जो थी और population थी country की, वो indirectly या virtually control था उसका भी, उस पर भी East India Company का. तो इस तरीके से हमारी पूरी country इनके control में थी. Now come to next page on this box elsewhere. Slave trade in South Africa. The Dutch trading ships reached southern Africa in the 17th century. Soon a slave trade began. People were captured, chained and sold in slave markets. When slavery ended in 1834, there were 36,774 privately owned slaves at the Cape located at the southernmost tip of Africa. Dutch trading ships jo the wo southern Africa pahunche the 17th century mein, to wahan par bahut jald hi slave trade शुरू हो गया था. स्लेव ट्रेड यानी कि मजदूरों को बेचा जाता था, उनको कैप्चर करके उनको चेन में बांधकर और स्लेव मार्केट में बेचा जाता था. जब स्लेवरी एंड हुई 1834 में, तो उस टाइम पर 36,774 प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स थे जो कि केप में थे, जो कि सदर्न मोस्ट टिप है अफ्रीका का. वहाँ पर अ विजिटर टू द केप इन 1824 हैज लेफ्ट अ मूविंग अकाउंट ऑफ वॉट ही सॉ एट अ स्लेव ऑक्शन. तो एक विजिटर जब केप पे आया था 1824 में, तो उसने क्या देखा उसने वो बताया. हैविंग लर्न दैट देयर वॉज टू बी सेल ऑफ कैटल फार्म स्टॉक एक्सेट्रा बाय ऑक्शन, वी हॉल्टेड और वैगन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोक्योरिंग फ्रेश ऑक्शन. अमंग द स्टॉक वॉज अ फीमेल स्लेव एंड हर 3 children. The farmers examined them as if they had been so many head of cattle. They were sold separately and to different purchasers. The tears, the anxiety, the anguish of the mother while she cast heart-rending look upon her children and the simplicity and touching sorrow of poor young eyes, while they clung to their distracted parent, contrasted with the marked intensive insensitivity and jocular contences of the spectators. तो ये जो डच ट्रेडिंग जो विजिटर आए थे केप में, ही सेइंग कि मैंने बहुत सारी चीज़ों का ऑक्शन होते हुए देखा है, नीलामी होते हुए, मैंने कैटल, फार्म स्टॉक इन सब का नीलामी होते हुए देखा है, लेकिन किसी व्यक्ति की नीलामी हो ये पहली बार देखा. तो उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था, वो एक लेडी को बेच रहा था, उसके साथ उसके 3 बच्चे थे. तो जब उसको बेचा जा रहा था तो ऐसा नहीं था किसी एक व्यक्ति को पूरा परिवार बेचा जा रहा है, सबको अलग अलग बेचा जा रहा था, 2 अलग अलग लोगों को या जितने लोग हैं उतने अलग अलग लोगों को. तो उनके मन में जो इतनी ज़्यादा दया की भावना थी, जो इतना ज़्यादा वो लोग डरे हुए थे, रो रहे थे, तो वो दिखा रहे हैं इसमें, बता रहे हैं कि ये ऐसा दौर था जब यहाँ पर स्लेवरी सिस्टम था और स्लेव्स को बेचा जाता था. नाउ कम टू दिस, लेट्स इमेजिन बॉक्स, यू आर लिविंग इन इंग्लैंड इन द लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी. How would you have reacted to the stories of British conquest? Remember that you have read about the immense fortunes that many of the officials were making. So it's your task you have to do. Now come to this let's recall. First is match the following. First one is Diwani. So answer for Diwani is right to collect land revenue. Second is Tiger of Mysore. Answer is Tipu Sultan. Third is Fauzdari Adalat. Answer is Criminal Court. Fourth is Ram Chanamma. Answer is led an anti-British movement in Kittur. And last is Sipahi, that means Sipoy. Come to second question of fill in the blanks. First, the British conquest of Bengal began with the Battle of Plassey. Second, Hyder Ali and Tipu Sultan were the rulers of Mysore. Third, Dalhousie implemented the doctrine of lapse. Fourth, Maratha kingdoms were located mainly in the part of Western India. Come to third one, state true or false. First is the Mughal Empire became stronger in the 18th century. False. Second is the English East India Company was the only European company that traded with India. False. Third is Maharaja Ranjit Singh was the ruler of Punjab. True. And fourth is the British did not introduce administrative changes in the territories they conquered. This is also false. Now come to fourth question. What attracted European trading companies in India? And the answer is, first point, the fine qualities of cotton and silk produced in India. And second, Indian spices such as pepper, cloves, cardamom and cinnamon. Come to fifth one. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and East India Company? Answer is, first point, the Bengal Nawabs exerted their power and autonomy and refused to grant the company concession. Second, they demanded large tribute for the company's right to trade. Third, they denied the company any right to mint coins. Fourth, they stopped the company from extending its fortification. Come to sixth question. How did the assumption of Diwani benefit the East India Company? And the answer is, the Mughal Emperor in 1765 appointed the companies the Diwani of the provinces of Bengal. The Diwani allowed the company to exploit the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced. Although its trade had expanded, it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. The overflow of gold from Britain stopped after the assumption of Diwani. Now, revenue from India could finance company expenses. These revenues they used to purchase cotton and silk textiles in India, maintain company troops and meet the cost of building the company port and offices at Calcutta. Come to seventh question. Explain the system of subsidiary alliance. And the answer is, under the system of subsidiary alliance, Indian rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. If the Indian rulers failed to make the payment, the part of their territory was taken away as plenty. The states which had to lose their territories on this ground were Awadh and Hyderabad. Come to eighth one. In what way was the administration of the company different from that of Indian rulers? And the answer is, the administration of the company was different from that of Indian rulers in the following ways. First point is, the company divided its administrative units called presidencies. There were 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay. In India, districts were the main administrative units. Second point is, each presidency was ruled by a governor, districts were ruled by the collectors. Third, the supreme head of the administration of the company was the governor general, but in India, the head of the administration was the king. Fourth, the main job of the governor general was to introduce administrative reforms, while the main job of the collector was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district. Now come to question number 9. Describe the changes that occurred in the composition of the company's army. And the answer is, several changes occurred in the composition of company's army. First point is, the company began recruitment of its own army, which came to be known as the Sepoy Army. Second, as the warfare technology changed from 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. Third, the soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiments now became more important. Fourth, in the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. Soldiers were increasingly subjected to European-style training, drill, and discipline that regulated their life for more than before. Come to question number 10. After the British conquest of Bengal, Calcutta grew from small village to a big city. Find out about the culture, architecture, and life of Europeans and Indians of the city during the colonial period. So it's your task, you have to do it. Come to 11th one. Collect pictures, stories, poems, and information about any of the following: the Rani of Jhansi, Mahaji Sindhia, Haider Ali, Maharaja Ranjit Singh, Lord Dalhousie, or any other contemporary ruler of your region. और उनके आपको pictures, poems, stories सब collect करनी है ताकि आपको उसके बारे में और ज़्यादा समझ में आ जाए, एंड ये चैप्टर आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाए, समझ में आ जाए आपको, एक्सप्लेनिंग जो जितना भी किया है मैंने वो सब कुछ अच्छे से कवर अप हो जाए. ओके, सो हियर वी एंड आवर चैप्टर. जितना भी सब कुछ इसमें एक्टिविटीज एंड ऑल गिवन है, प्लीज डू ऑल दीज एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग.
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद.